countrywide.
नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना बोस और आज हम चर्चा करेंगे कुपोषण के खिलाफ राष्ट्र अभियान पोषण पखवाड़ा 2026 पर। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। डॉक्टर बिष्ट, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
पोषण अभियान के तहत हर साल पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को कम करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और पोषण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। डॉक्टर बिष्ट, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि पोषण पखवाड़ा क्या है और इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी।
पोषण प्रोग्राम 8 मार्च 2018 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ये, और इसमें हम 2022 तक के हमने कहा था कि हम कुछ 5 साल में कुछ कार्यक्रम में सुधार करेंगे। कुपोषण के जो मापदंड होते हैं, जैसे कितनी स्टंटिंग है, कितने बच्चे गिट्टे हैं, कितने कुपोषित हैं, कमजोर हैं, वजन कम है जिनका उनको, और किनका वेट फॉर हाइट जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, इन तीनों जो मापदंड होते हैं न्यूट्रिशन के, उनको हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं पूरे देश में, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चालू करेंगे। और मिशन पोषण 2.0 जो उसके बाद शुरू करा गया है, जिसके अंदर हम और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ICDS, पोषण अभियान और दूसरे न्यूट्रिशन इनिशिएटिव को करते हैं। तो एक तो पोषण माह भी मनाया जाता है सितंबर के महीने पे, और अभी पखवाड़ा मनाया जाता है। तो इस तरह से साल में कई बार इस तरह की गतिविधियां करी जाती है, जिसमें विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज के तहत भी, आंगनबाड़ी के अंदर भी तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। हर राज्य कार्यक्रम करता है, और उसके अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स को तो मोबाइल फोन दिए गए हैं तकरीबन 10,000 के कॉस्ट के आसपास, जो 25-30,000 ऐसे मोबाइल फोन दे दिए गए हैं। और उन सबके साथ साथ बच्चों का वजन नापने की मशीनें, इन्फेंट वेइंग स्केल, मदर का वेइंग स्केल हैं, और लेंथ कैसे लेनी है, हाइट कैसे, स्टीरियोमीटर्स हैं, इन्फेंटोमीटर्स हैं, ये सब जो तकरीबन 8-9,000 के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी जगह जगह पे दिए गए हैं। और जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लाभ के लिए न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पे हम कुपोषित बच्चों का जो आहार है वो देते हैं, और कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, उनको डबल राशन मिलता है। तो इस तरह के कई कई सारे प्रोग्राम करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत जो है एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, खून की कमी जो है बहुत ज्यादा 50-70% में थी पहले, अभी भी तकरीबन उसके आसपास चल रही है 50-60% में, तो किस तरह से हम खून की कमी जो एनीमिया है उसको कम कर सकते हैं, और मिड डे मील प्रोग्राम के साथ भी इसको जोड़ा गया है। सो इन सब कार्यक्रमों के साथ पोषण माह को बढ़ाया गया है, और इस तरह से हम जो कुपोषण की समस्या है, गिट्टापन की समस्या है, उसको कम करने के काम कर सकते हैं।
डॉक्टर बिष्ट, इस वर्ष पोषण पखवाड़े का विषय है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। इसके पीछे क्या सोच है?
एकदम मस्तिष्क जो है ना, बच्चों में हम सोचते हैं कि सब एक ही दिमाग लेके पैदा होते हैं
जी।
जो न्यूरॉन्स हैं या जो दिमाग में कोशिकाएं हैं और जो न्यूरॉन्स हैं उनके कनेक्शन बढ़ते हैं, उनका नंबर बढ़ता है अगर उस तरह का आहार दिया जाए बच्चों को। बच्चे का अगर हम हेड सर्कमफेरेंस, सर का जो नाप है, वो जन्म के समय पे 33-35 सेंटीमीटर होता है, और वो 1 साल के बाद 41 के करीब, 2 साल पे 45-48, और 5 साल पे 50, और 7 साल पे तकरीबन वो 52-54 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद से दिमाग जो हमारा एडल्टहुड तक है वो मुश्किल से 55-52, आप अपना भी नापेंगे तो 52-53-54 नहीं होगा। तो आप सोचिए तकरीबन 5-7 साल के बाद वो दिमाग बड़ा नहीं है। तो ये जब बढ़ रहा है, मस्तिष्क जब बन रहा है, संरचना हो रही है, उस वक्त अगर आहार में कमी हो, कुपोषण हो, तो क्या होगा? हाथ पैर चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो चली जाएगी, दिल चलाने के लिए चाहिए होगी, सांस के लिए चली जाएगी, तो दिमाग के लिए तो कहां बचेगी फिर? और उनमें जितने न्यूरॉन्स में जितने कनेक्शन बनने चाहिए थे, जितने न्यूरॉन्स की संख्या होनी चाहिए थी, वो सब नहीं होगा। तो ब्रेन देखा गया है छोटे साइज का होता है जो मैलरिश बच्चे होते हैं, और उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उतने अच्छे कनेक्शन नहीं बनाए होते हैं, एक से एक कनेक्शन नहीं होते हैं, फास्ट फास्ट काम करने में, एनर्जी लेने में, या रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो तेज नहीं हो सकते। तो 6 साल तक के जब तक हमारा मस्तिष्क बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है ब्रेन ग्रोथ के टाइम पे, उस वक्त आहार में जरा भी कमी, उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो जीवन पर्यंत चल सकते हैं।
डॉक्टर बिष्ट, आजकल बच्चों में बचपन से ही मोबाइल और स्क्रीन की आदत लग जाती है, इससे उनके मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है आपके हिसाब से?
बच्चों में, छोटे बच्चों में, उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो चाहिए ब्रेन में, अभी उनके ब्रेन को, उनकी मसल्स को, उनके हाथ पैरों को वो अनुभव चाहिए कि वो पत्तों को छूना चाहते हैं, वो मिट्टी को छूना चाहते हैं, वो खिलौनों से खेलना चाहते हैं, वो पक्षी की आवाज सुनना चाहते हैं, वो उड़ते हुए पक्षी को देखना चाहते हैं। वो जो अनुभव है, वो भालू की आवाज, कहानियां, नानी की कहानियां, वो जो एक्सप्रेशन दादी नानी माँ जब बताएंगी वो देखना चाहती हैं, वो जो लिप्स के मूवमेंट है उससे वो भाषा सीखता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो स्क्रीन में नहीं हो पाती। और स्क्रीन जो होता है, क्योंकि वो 3D नहीं है और वो आपका फ्लैट टीवी है और उसमें एक पिक्चर ही देख रहे हैं, वो जड़वत हो जाते हैं बच्चे। और उनके जो सारे अनुभव हैं, जिस तरह के अनुभव, सेंसरी इंटीग्रेशन है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो इनसे बच्चों में तरह तरह की विकार देखे जा सकते हैं। और जैसे अभी निकला ही है 2 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड ऑटिज्म डे, तो ऑटिज्म जैसी जो मनोविकार है वो हो सकता है जिसमें बच्चे का सोशल रेसिप्रोकेशन नहीं होता, वो आंखों से आंखें नहीं मिला पाता, बच्चों से बच्चों खेल नहीं पाता है, अपनी दुनिया में रहता है, इस तरह के विकार बच्चों में होने के साथ हैं।
जी डॉक्टर बिश्त, सरकार माताओं और बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और उन्हें किस तरह से लाभ दिए जा रहे हैं?
सरकार ने, आप कह सकते हैं, एक तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो ICDS प्रोग्राम है जो हमेशा से चलता है, उसी के अंदर पोषण अभियान भी करा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसके अंदर अम्ब्रेला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का, और मदर और बच्चों दोनों के लिए चले जा रही है। उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को कैश इंसेंटिव भी है और लैक्टेटिंग मदर्स को कुछ इंसेंटिव भी दे जा रहे हैं, और खाने पीने का तो कार्यक्रम किया ही गया है। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और जो सैम प्रोग्राम है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, अति कुपोषित बच्चे जो है उन बच्चों के लिए कार्यक्रम करे गए हैं जिसपे उनको स्पेशल न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर पे रखते हैं, और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम भी करे गए हैं। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रियां काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काम कर रही है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वाले मिनिस्ट्री काम कर रही है, रूरल डेवलपमेंट काम कर रही है, पंचायती राज काम कर रही है। देखिए आंगनवाड़ियों में 8 तारीख को और 22 तारीख को वो एक स्पेशल डे बनाते हैं, अब उन्होंने अन्नप्राशन दिवस या सुपोषण दिवस या गोद भराई जैसी जो है वो भी करनी शुरू कर दी है।
डॉक्टर बिश्त, मैं ये पूछना चाहूंगी अब कि महिलाओं को गर्भावस्था से पहले और इसके दौरान अपने पोषण का कैसे ध्यान रखना चाहिए?
हाँ, गर्भावस्था में उनकी जो कैलोरीज हैं वो बढ़ जाती हैं, तो तकरीबन 350 से 550 के बीच की कैलोरीज है जो गर्भावस्था और जब स्तनपान के ड्यूरेशन है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज उनको चाहिए होती हैं। तो उसके मामले में वो कैसे कर सकते हैं वो उसके बारे में जानकारी आंगनवाड़ी वर्कर है वो दे रहे होते हैं, और इस वक्त सही आहार मिले और सही तरीके से उसका चेकअप हो, एंटीनेटल चेकअप हो जिसमें उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, माँ का बच्चे का गर्भ में वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो कैसे होगा, तो उस बारे में कार्यक्रम करे जाते हैं। और गर्भावस्था वाले में बहुत जरूरी है क्योंकि गर्भ में ही अगर कुपोषण हो जाएगा फिर तो बाद में बच्चे को संभालना और मुश्किल हो जाता है। तो जो कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, वो और भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों में गर्भावस्था वाली जो महिला है उनके आहार के बारे में जो सरकार है बहुत सचेत है और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है।
बिल्कुल, विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
जो पहले 1000 दिन है ना, उसमें से आप लगा लीजिए कि 3 साल जो 2 साल बच्चे के हैं, 365 दिन करके तो 730 दिन तो यही हो गए, और जो गर्भ के हैं दिन 9 महीने वो मिला लिए जाए तो वो 1000 दिन के आसपास हैं।
बिल्कुल,
तो ये जो कुल मिला के जो 2 साल तक के जो ब्रेन डेवलपमेंट है गर्भ धारण करने से लेके, वो 1000 दिन जो हैं वो बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं और वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त बच्चे को किस तरह से आहार मिल रहा है, उसका ब्रेन कैसे डेवलप हो रहा है, अगर उसको बार बार बीमारियां हो रही हैं या गर्भ के समय पे उसके दिमाग में चोट आ गई है या उसको पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा है या निमोनिया हो गया है, उस वक्त दस्त हो गए, तो अगर कुछ भी हो रहा है जो पहले 2 साल बढ़ता हुआ मस्तिष्क है, जिस मस्तिष्क की ग्रोथ हो रही है, उस वक्त अगर कोई भी इंजरी होगी, कोई भी हार्म होगा, इट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, काफी दूरगामी इसके परिणाम निकलेंगे।
समुदाय और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी इस अभियान को कैसे और मजबूत बना सकता है?
मेघना, मुझे याद आ रहा है जब अपना कोर्स कर रहा था मैं MBA का 95 के आसपास दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, और तब हम कुपोषण को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, हमें करना है, हमें बच्चों को बचाना है। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने पोषण को दोबारा से वो एक प्राथमिकता दी है और इन सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो एक आंदोलन चलाया है पोषण आंदोलन, इसमें जन संवाद है, जन आंदोलन है और सरकार ने उसको माना है, उसको इग्नोर नहीं करा है और खाली समाज के ऊपर छोड़ नहीं दिया है। तो समाज की भागीदारी बढ़ाई है और तरह तरह के कार्यक्रम है पंचायती राज के अंदर, जो पंचायत है वो इसमें भाग लेते हैं। पोषण ट्रैकर में किस गांव ने कितना काम किया, किस शहर ने कितना काम किया, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हुआ है, कितनी तरह की गतिविधियां करी गई, क्या किचन गार्डन बनाए गए, क्या बच्चों को नापा गया, क्या इस तरह की रैलियां निकाली गई, क्या आंगनबाड़ी वर्कर ने गर्भावस्था वाली माओं को खाने पीने के बारे में बताया। तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और कोई भी जाके पोषण ट्रैकर में जाके देख सकता है, गैलरी में जाके देख सकता है, जो पूरे देश में गतिविधियां हो रही है, कार्यक्रम होते हैं इस माह में और इस पखवाड़े में पोषण के, साल भर उस ट्रैकर से देखा जा सकता है। और इससे जो जागरूकता फैली है, मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो हमारे बच्चे होंगे वो कुपोषण से बचे रहेंगे। है तो ये सामाजिक प्रॉब्लम, जब तक समाज पूरा भागीदारी नहीं लेगा, गांव का सरपंच उसको ध्यान नहीं रखेगा और जो परिवार के मुखिया हैं, दादा है, दादी है, वो बच्चों के आहार को लेके, कुपोषण को लेके सेंसिटिव नहीं होंगे, संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। और बगैर इस पोषण अभियान के तहत और इस पोषण जन आंदोलन के तहत इसमें बहुत बहुत सुधार आया।
डॉक्टर बिष्ट, कैसे पता हम कर सकते हैं कि किसी बच्चे का पोषण कम है या वो कुपोषित है?
हम बच्चों का वजन करते हैं और देखते हैं कि उस उम्र के, उस महीने के बच्चे के अनुपात में, जिस बच्चे का हम वजन कर रहे हैं उसका वजन ग्रोथ चार्ट में कहाँ आ रहा है, क्या वो तीसरे नंबर पे है, दसवें नंबर पे है, क्या वो पचासवें नंबर पे है या नब्बे नंबर पे है या सौ नंबर पे, हमें पता करना होता है कितने सेंटाइल पे है। तो अगर वो लेस देन थर्ड सेंटाइल है या माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब हम काफी कुपोषित कहते हैं तो माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो थर्ड सेंटाइल के आसपास होता है, तो अगर उतना है तो बच्चों को हम कुपोषित कहते हैं। इसी तरह से हम जब बच्चों को नापते हैं, नापने का सही तरीका है, बच्चों को कैसा नापा जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करा जाता है, एएनएम्स को ट्रेन करा जाता है कि किस तरह से बच्चों का वजन किया जाए और नापा जाए, तो एक सही तरीके से हम पता कर सकते हैं। इसीलिए इन सबकी ट्रेनिंग करी जाती है और सही तरीके से नापते हैं वो। उसके लिए स्टेडियोमीटर सरकार ने हर हेल्थ सेंटर में पहुंचाए हैं और स्टेडियोमीटर होते हैं जिसमें बच्चे को खड़ा करके नापते हैं और इंफेंटोमीटर होता है जिसमें लेटा के नापते हैं, और इन दोनों के अनुपात से कोई रेशियो होती है वेट फॉर हाइट, जिससे हम देखते हैं कि बच्चों में अति कुपोषण कितना है।
अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे पोषण पखवाड़ा जैसे अभियान से जुड़कर अपने परिवार और समाज को स्वस्थ बना सकें?
मेघना, जब बच्चा बोलने लग जाता है, जब वो स्कूल जाने लगता है, जब स्कूल की टीचर बोलती है कि बच्चा कमजोर है, या जब एक दूसरे को देखते हैं तब जाके वो कहे अरे हमारा बच्चा तो कमजोर हो गया, तब तक जो मस्तिष्क है वो काफी पीछे रह जाता है
जी।
अगर आपको करना है तो जन्म से ही लगे ना, वो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, जो आपको हम एफसीपी कार्ड देते हैं, मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड, टीकाकरण के समय उसमें बड़े बड़े ग्राफ दे रखे हैं, चार्ट दे रखे हैं बच्चे के विकास को लेकर, उसको आप भरिए, हर महीने कितना वजन आ रहा है और देखिए कि वो हरे पे आ रहा है, पीले पे आ रहा है या लाल पे आ रहा है। अगर वो हरे क्षेत्र में आ रहा है तो वो सेटिस्फैक्टरी है, अगर वो पीले में आ रहा है तो चिंताजनक है, अगर वो लाल एरिया में आ रहा है तो वो अति चिंताजनक है। और इन दोनों अवस्थाओं में आपको तुरंत स्वास्थ्य कर्मियों के पास संपर्क करना चाहिए और ये सब कार्य आप शुरू से करें, जन्म से करें तो जरूरी है। बच्चों के जो आहार है, स्तनपान आपको 6 महीने तो देना ही देना है, केवल स्तनपान देना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, और 6 महीने के बाद से आपको संपूरक आहार देना है। स्तनपान तो चलेगा कम से कम 2 साल तक, और उसके साथ साथ संपूरक आहार आप 6 महीने से शुरू करेंगे, जो दाल का पानी कतई नहीं होगा, जो चावल का पानी कतई नहीं होगा, वो ठोस आहार होगा, ऐसा आहार होगा जो अगर हम चम्मच को टेढ़ा करें तो गिरे ना, सिर्फ एक टंग जैसा बने और वो थोड़ा सा गाढ़ा ठोस आहार हो, जो बच्चा धीरे धीरे करके उसको और उसका गाढ़ापन बढ़ाते रहेंगे, उसकी ठोसता बढ़ाते रहेंगे। बट 6 महीने के बाद से भी कभी भी दाल का पानी या पतला खीर, पतला हलवा, ऐसे कुछ भी नहीं देना, इट शुड बी सम सॉलिड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। और जो हमारा आहार है उसमें हम विभिन्नता रखेंगे कि उसके अंदर लाल रंग की चीजें भी होनी चाहिए, हरे रंग भी होना चाहिए जो विटामिन देगा, आयरन देगा, उसमें कुछ एनिमल प्रोटीन भी होने चाहिए, भले ही वो दूध हो, पनीर हो, या वो मीट मांस मच्छी हो, अंडा हो, और साथ साथ में अनाज की मात्रा भी हो, जो कि चावल भी हो सकता है, जो गेहूं भी हो सकता है, और बीच में विटामिन के लिए थोड़े फल हो। तो एक मिनिमम डाइवर्सिटी जो है, इस तरह के 8 रंग में से 5 रंग के खाना हर रोज होना चाहिए बच्चे के खाने में, वो शुरू से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि जब बच्चा बड़ा होगा तब करेगा, अभी कैसे खा लेगा, तो वो शुरुआत से ही शुरू करेंगे तो काफी फायदा रहेगा।
डॉक्टर सुरेंद्र बिष्ट, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
countrywide.